ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय श्लोक 56 से आगे। पहले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग के तत्व के विषय में पूछा, तो उसके उत्तर में भगवान ने 4 से 12वें श्लोक तक कर्मयोग का और 41वें से 48वें श्लोक तक कर्मयोग का तथा संक्षेप में भक्ति योग का वर्णन किया और 13वें से 40वें श्लोक तक विचार प्रधान सांख्य योग का और 49वें से 55वें श्लोक तक ध्यान प्रधान सांख्य योग का एवं संक्षेप में पराभक्ति की प्राप्ति का वर्णन किया। अब भगवान शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन आरंभ करते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादा दवाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम्। अर्थात मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। मद व्यापाश्रय कर्मों का, कर्मों के फल का, कर्मों के पूरा होने अथवा न होने का, किसी घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति आदि का आश्रय न हो, केवल मेरा ही आश्रय हो, इस तरह जो सर्वथा मेरे ही परायण हो जाता है, अपना स्वतंत्र कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसका उद्धार मैं कर देता हूँ, उसको अपने जीवन निर्वाह या साधन संबंधी किसी बात की कमी नहीं रहती, सबकी मैं पूर्ति कर देता हूँ, यह मेरा सदा का एक विधान है, नियम है, जो कि सर्वथा शरण हो जाने वाले हर एक प्राणी को प्राप्त हो सकता है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणः, यहाँ कर्माणि पद के साथ सर्व और कुर्वाणः पद के साथ सदा पद देने का तात्पर्य है कि जिस ध्यान परायण सांख्य योगी ने शरीर वाणी और मन का संयमन कर लिया है, अर्थात जिसने शरीर आदि की क्रियाओं को संकुचित कर लिया है और एकांत में रहकर सदा ध्यान योग में लगा रहता है, उसको जिस पद की प्राप्ति होती है, उसी पद को लौकिक पारलौकिक सामाजिक शारीरिक आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते हुए भी मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मेरी कृपा से प्राप्त कर लेता है। हरेक व्यक्ति को यह बात तो समझ में आ जाती है कि जो एकांत में रहता है और साधन भजन करता है, उसका कल्याण हो जाता है, परंतु यह बात समझ में नहीं आती कि जो सदा मशीन की तरह संसार का सब काम करता है, उसका कल्याण कैसे होगा, उसका कल्याण हो जाए ऐसी कोई युक्ति नहीं दिखती, क्योंकि ऐसे तो सब लोग कर्म करते ही रहते हैं, इतना ही नहीं मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं, पर उन सब का कल्याण होता हुआ दिखता नहीं और शास्त्र भी ऐसा कहता नहीं। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं मत प्रसादात, तात्पर्य यह है कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया है, उसका कल्याण मेरी कृपा से हो जाएगा, कौन है मना करने वाला। यद्यपि प्राणी मात्र पर भगवान का अपनापन और कृपा सदा सर्वदा स्वतः सिद्ध है, तथापि यह मनुष्य जब तक असत संसार का आश्रय लेकर भगवान से विमुख रहता है, तब तक भगवत कृपा उसके लिए फलीभूत नहीं होती, अर्थात उसके काम में नहीं आती। परंतु यह मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर ज्यों ज्यों दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है, त्यों ही त्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, और ज्यों ज्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता जाता है, त्यों ही त्यों भगवत कृपा का अनुभव होता जाता है। जब सर्वथा भगवान का आश्रय ले लेता है, तब उसे भगवान की कृपा का पूर्ण अनुभव हो जाता है। अवाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम्, स्वतः सिद्ध परम पद की प्राप्ति अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से अथवा अपने साधन से नहीं होती, यह तो केवल भगवत कृपा से ही होती है। शाश्वत अव्यय पद सर्वोत्कृष्ट है, उसी परम पद को भक्ति मार्ग में परम धाम, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत लोक आदि कहते हैं, और ज्ञान मार्ग में विदेह, कैवल्य, मुक्ति, स्वरूप, स्थिति आदि कहते हैं। वह परम पद तत्व से एक होते हुए भी मार्गों और उपासनाओं का भेद होने से उपासकों की दृष्टि से भिन्न भिन्न कहा जाता है। भगवान का चिन्मय लोक एक देश विशेष में होते हुए भी सब जगह व्यापक रूप से परिपूर्ण है। जहाँ भगवान है वहीं उनका लोक भी है, क्योंकि भगवान और उनका लोक तत्व से एक ही हैं। भगवान सर्वत्र विराजमान है, अतः उनका लोक भी सर्वत्र विराजमान है, सर्वव्यापी है। जब भक्त की अनन्य निष्ठा सिद्ध हो जाती है तब परिच्छिन्नता का अत्यंत अभाव हो जाता है और वही लोक उसके सामने प्रकट हो जाता है, अर्थात उसे यहाँ जीते जी ही उस लोक की दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगता है। परंतु जिस भक्त की ऐसी धारणा रहती है कि वह दिव्य लोक एक देश विशेष में ही है, तो उसे उस लोक की प्राप्ति शरीर छोड़ने पर ही होती है। उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं और कहीं कहीं स्वयं भगवान भी आते हैं। परिशिष्ट भाव। ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे, तब वह अहंता ममता काम क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। परंतु भक्त के लिए यहाँ बताया कि वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब विहित कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। तात्पर्य है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सुगमता से कल्याण हो जाता है। भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, प्रत्युत अपने बल विद्या आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न रखकर केवल विश्वास पूर्वक भगवान का ही आश्रय लेना पड़ता है। फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। भगवान भी केवल भक्त के आश्रय को देखते हैं, उसके दोषों को नहीं देखते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। रामायण में आया है, रहितन प्रभु चित्त चूहक किए की करत सुरति सय बारहिए की जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। मद व्यपाश्रय का अर्थ है मेरा विशेष आश्रय अर्थात अनन्य आश्रय, जिसमें दूसरे किसी का किंचन मात्र भी आश्रय न हो। एक बान करुणान दान की सो प्रिय जाके गति न आन की। पूर्व श्लोक में अपना सामान्य विधान बताकर अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के लिए विशेष रूप से आज्ञा देते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम् भव। अर्थात चित्त से संपूर्ण कर्म मुझमें अर्पण करके मेरे परायण होके तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझमें चित्त वाला हो जा। इस श्लोक में भगवान ने चार बातें बताई हैं। संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे, स्वयं को मेरे अर्पित कर दे, समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले और निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा, अर्थात मेरे साथ अटल संबंध कर ले। चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य है कि मनुष्य चित्त से यह दृढ़ता से मान ले कि मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि और संसार के व्यक्ति पदार्थ घटना परिस्थिति आदि सब भगवान के ही हैं। भगवान ही इन सब के मालिक हैं। इनमें से कोई भी चीज किसी की व्यक्तिगत नहीं है। केवल इन वस्तुओं का सदुपयोग करने के लिए ही भगवान ने व्यक्तिगत अधिकार दिया है। इस दिए हुए अधिकार को भी भगवान के अर्पण कर देना है। शरीर इंद्रियां, मन आदि से जो कुछ शास्त्र विहित सांसारिक या पारमार्थिक क्रियाएं होती हैं वे सब भगवान की मर्जी से ही होती हैं। मनुष्य तो केवल अहंकार के कारण उनको अपनी मान लेता है। उन क्रियाओं में जो अपनापन है उसे भी भगवान के अर्पण कर देना है, क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खता से माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। इसलिए उनमें अपनेपन का भाव बिल्कुल उठा देना चाहिए और उन सब पर भगवान की मुहर लगा देनी चाहिए। मत परह, भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं, उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है, मेरे को करना भी कुछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसी से लेना भी कुछ नहीं है। अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से मेरा किंचन मात्र कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा अनन्य भाव हो जाना ही भगवान के परायण होना है। एक बात खास ध्यान देने की है, रुपए पैसे कुटुंब शरीर आदि को मनुष्य अपना मानते हैं और मन में यह समझते हैं कि हम इनके मालिक बन गए, हमारा इन पर आधिपत्य है, परंतु वास्तव में यह बात बिल्कुल झूठी है, कोरा वहम है और बड़ा भारी धोखा है। जो किसी चीज़ को अपनी मान लेता है वह उस चीज़ का गुलाम बन जाता है और वह चीज़ उसकी मालिक बन जाती है, फिर उस चीज़ के बिना वह रह नहीं सकता। अतः जिन चीज़ों को मनुष्य अपनी मान लेता है वे सब उस पर चढ़ जाती हैं और वह तुच्छ हो जाता है। वह चीज़ चाहे रुपया हो, सारे चाहे कुटुंबी हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या बुद्धि आदि हो, ये सब चीज़ें प्राकृत हैं और अपने से भिन्न हैं, पर हैं, इनके अधीन होना ही पराधीन होना है। भगवान स्वकीय हैं, अपने हैं, उनको मनुष्य अपना मानेगा तो वे मनुष्य के वश में हो जाएंगे। भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है उतना आदर करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। भगवान भक्त के दास हो जाते हैं और उसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, परंतु संसार मनुष्य का दास बनकर उसे अपना मुकुटमणि नहीं बनाएगा, वह तो उसे अपना दास बनाकर पद दलित ही करेगा। इसलिए केवल भगवान के शरण होकर सर्वथा उनके उन्हीं के परायण हो जाना चाहिए। बुद्धि योगमुपाश्रित्य, गीता भर में देखा जाए तो समता की बड़ी भारी महिमा है। मनुष्य में एक समता आ गई तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि सब कुछ बन गया, परंतु यदि उसमें समता नहीं आई तो अच्छे से अच्छा लक्षण आने पर भी भगवान उसको पूर्णता नहीं मानते। वह समता मनुष्य में स्वाभाविक रहती है, केवल आने जाने वाली परिस्थितियों के साथ मिलकर वह सुखी दुखी हो जाता है। इसलिए उनमें मनुष्य सावधान रहे कि आने जाने वाली परिस्थिति के साथ मैं नहीं हूँ, सुख आया, अनुकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूँ, और सुख चला गया, अनुकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूँ, ऐसे ही दुख आया, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूँ, और दुख चला गया, प्रतिकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूँ। अतः सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, हानि लाभ में मैं सदैव ज्यों का त्यों रहता हूँ। परिस्थितियों के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता, सदा वही रहता हूँ। इस तरह अपने आप में स्थित रहें, अपने आप में स्थित रहने से सुख दुख आदि में समता हो जाएगी। यह समता ही भगवान की आराधना है। समत्व माराधन मच्युत्यस्य, इसीलिए यह भगवान बुद्धि योग अर्थात समता का आश्रय लेने के लिए कहते हैं। जो अपने को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है उसका चित्त भी सर्वथा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, फिर उस पर भगवान का जो स्वतः है स्वाभाविक अधिकार है वह प्रकट हो जाता है और उसके चित्त में स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। यही मच्चित्त है होना है। मच्चित्त है पद के साथ सततम पद देने का अर्थ है कि निरंतर मेरे में, भगवान में चित्त वाला हो जा। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का हूँ। इस प्रकार अहंता भगवान में लग जाएगी। अहंता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। जैसे शिष्य बनने पर मैं गुरु का हूँ, इस प्रकार अहंता गुरु में लग जाने पर गुरु की याद निरंतर बनी रहती है। गुरु का संबंध अहंता में बैठ जाने के कारण इस संबंध की याद आए तो भी याद है और याद न आए तो भी याद है, क्योंकि स्वयं निरंतर रहता है। इसमें भी देखा जाए तो गुरु के साथ उसने खुद संबंध जोड़ा है, परंतु भगवान के साथ इस जीव का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। उस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा। साधक कोई भी सांसारिक काम धंधा करे तो उसमें यह एक सावधानी रखे कि अपने चित्त को उस काम धंधे में द्रवित न होने दे, चित्त को संसार के साथ घुलने मिलने दे, अर्थात तदाकार न होने दे, प्रत्युत उसमें अपने चित्त को कठोर रखे, परंतु भगवन नाम का जप, कीर्तन, भगवत कथा, भगवत चिंतन आदि भगवत संबंधी कार्यों में चित्त को द्रवित करता रहे, तल्लीन करता रहे, उस रस में चित्त को लगाकर तरांतर करता रहे। इस प्रकार करते रहने से साधक बहुत जल्दी भगवान में चित्त वाला हो जाएगा। काठिन्यम विषये कुर्यात् द्रवत्वं भगवत्पदे उपायैः शास्त्र निर्दिष्टैः अनुक्षणमतो बुधः। प्रेम संबंधी विशेष बात। चित्त से सब कर्म भगवान के अर्पण करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है और भगवान के परायण होने से नित्य योग यानी प्रेम हो जाता है। नित्य योग में योग, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग और वियोग में वियोग, ये चार अवस्थाएं चित्त की वृत्तियों को लेकर होती हैं। इन चारों अवस्थाओं को इस प्रकार समझना चाहिए। वास्तव में संसार के साथ कभी संयोग हो नहीं सकता, उसका तो नित्य ही वियोग रहता है। जैसे मन में किसी वस्तु का चिंतन होता है तो वह उस वस्तु का माना हुआ संयोग है, जिससे उस वस्तु के न मिलने का दुख होता है। जब वस्तु बाहर से मिल जाती है तब उस वस्तु का भीतर से वियोग हो जाता है, जिससे सुख होता है। ऐसे ही किसी कारण से बाहर से वस्तु चली जाए, नष्ट हो जाए, तो मन से उस वस्तु का संयोग होने पर दुख होता है। और विवेक विचार के द्वारा यह वस्तु हमारी थी ही नहीं, हमारी हो सकती ही नहीं, इस प्रकार वस्तु को मन से निकाल देने पर सुख होता है। तात्पर्य यह है कि भीतर से संयोग माना तो बाहर से वियोग है और बाहर से संयोग माना तो भीतर से वियोग है। अतः वास्तव में संसार के साथ नित्य वियोग ही रहता है। मनुष्य केवल भूल से संसार के साथ संयोग मान लेता है। जैसे श्री राधा और श्री कृष्ण का परस्पर मिलन होता है तो यह नित्य योग में योग है। मिलन होने पर भी श्री जी में ऐसा भाव आ जाता है कि प्रियतम कहीं चले गए हैं और वे एकदम कह उठती हैं कि प्यारे तुम कहाँ चले गए, तो यह नित्य योग में वियोग है। श्याम सुंदर सामने नहीं है पर मन से उन्हीं का गाढ़ चिंतन हो रहा है और वे मन से प्रत्यक्ष मिलते हुए दिख रहे हैं, तो यह वियोग में नित्य योग है। श्याम सुंदर थोड़े समय के लिए सामने नहीं आए पर मन में ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया, श्याम सुंदर मिले नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं, श्याम सुंदर कैसे मिलें, तो यह वियोग में वियोग है। वास्तव में इन चारों अवस्थाओं में भगवान के साथ नित्य योग ज्यों का त्यों बना रहता है। वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होने की संभावना भी नहीं। इसी नित्य योग को प्रेम कहते हैं, क्योंकि प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं, वहाँ भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ही भक्त और भगवान में संयोग वियोग की लीला हुआ करती है। यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार है, जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं तब प्रियतम पहले चले गए थे, उनसे वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर न चले जाएं। योग और वियोग में प्रेम रस की वृद्धि होती है। यदि सदा योग ही रहे, वियोग हो न हो, तो प्रेम रस बढ़ेगा नहीं, प्रत्युत अखंड और एक रस रहेगा। अतः प्रेम रस को बढ़ाने के लिए भगवान अंतर्धान भी हो जाते हैं। इस भाव के कारण प्रेमास्पद में मिलने की तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता, वे चले जाएंगे इस बात को लेकर मन ज़्यादा खिंचता है, इसलिए इस प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान बताया है। प्रेम भक्ति में चार प्रकार का रस अथवा रति होती है, दास, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति ज़्यादा होती चली जाती है। परंतु जब इन चारों में से कोई एक भी रस पूर्णता में पहुँच जाता है, तब उसमें दूसरे रसों की कमी नहीं रहती, अर्थात उसमें सभी रस आ जाते हैं। जैसे दास्य रस पूर्णता में पहुँच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य तीनों रस आ जाते हैं। यही बात अन्य रसों के विषय में भी समझनी चाहिए। कारण यह है कि भगवान पूर्ण हैं, उनका प्रेम भी पूर्ण है और परमात्मा का अंश होने से जीव स्वयं भी पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध से ही आती है, इसलिए भगवान के साथ किसी भी रीति से रति हो जाएगी तो वह पूर्ण हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। दास्य रति में भगवान का भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है, वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में रखें और मेरे से चाहे जैसा काम लें, मेरे पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी सम्मति लिए ही मेरे लिए सब विधान करते हैं। सख्य रति में भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे सखा हैं और मैं उनका सखा हूँ, वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूँ, उनका मेरे पर पूरा अधिकार है और मेरा उन पर पूरा अधिकार है, इसलिए मैं उनकी बात मानता हूँ तो मेरी भी बात उनको माननी पड़ेगी। वात्सल्य रति में भक्त का अपने में स्वामी भाव रहता है कि मैं भगवान की माता हूँ या उनका पिता हूँ अथवा उनका गुरु हूँ, वह तो हमारा बच्चा है अथवा शिष्य है, इसलिए उसका पालन पोषण करना है, उसकी निगरानी भी रखनी है कि कहीं वह अपना नुकसान न कर ले। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते थे और कन्हैया वन में जाता है तो उसकी निगरानी रखने के लिए दाऊ जी को साथ में भेजते हैं। माधुर्य रति में भक्त को भगवान के ऐश्वर्य की विशेष विस्मृति रहती है, अतः इस रति में भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता, घनिष्ठ अपनापन मानता है। अभिन्नता मानने से उनके लिए सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख आराम पहुँचाना है, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, ऐसा भाव बना रहता है। लोग प्रायः माधुर्य भाव में स्त्री पुरुष का भाव ही समझते हैं, परंतु यह भाव स्त्री पुरुष के संबंध में ही होता है, यह नियम नहीं है। माधुर्य नाम मधुरता अर्थात मिठास का है और वह मिठास आती है भगवान के साथ अभिन्नता होने से। वह अभिन्नता जितनी अधिक होगी मधुरता भी उतनी ही अधिक होगी। अतः दास्य, सख्य और वात्सल्य भाव में से किसी भी भाव में पूर्णता होने पर उसमें मधुरता कम नहीं रहेगी। भक्ति के सभी भावों में माधुर्य भाव रहता है। अभेद और अभिन्नता में भेद है, जिसमें केवल एक तत्व ही रह जाए, द्वैत भाव सर्वथा समाप्त हो जाए, उसका नाम अभेद है, और दो होते हुए भी एक रहने का नाम अभिन्नता है। जैसे दो मित्रों में भीतर से घनिष्ठता होने से अभिन्नता रहती है, अभिन्नता जितनी गाढ़ होती है उतना ही माधुर्य रस प्रकट होता है, इसी को प्रेम रस कहते हैं। भगवान भी इस प्रेम रस के लोभी हैं, इस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए ही भगवान एक से अनेक रूपों में हो जाते हैं। प्रेम रस अलौकिक है, चिन्मय है, इसका आस्वादन करने वाले केवल भगवान ही हैं। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय तत्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। अतः एक चिन्मय तत्व ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में हो जाता है। प्रेम के तत्व को न समझने के कारण कुछ लोग सांसारिक काम को ही प्रेम कह देते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि काम तो 84 लाख योनियों के संपूर्ण जीवों में रहता है और उन जीवों में भी जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं उनमें काम यानी सुख भोग की इच्छा अत्यधिक होती है, परंतु प्रेम के अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष ही होते हैं। काम में लेने ही लेने की भावना होती है और प्रेम में देने ही देने की भावना होती है। काम में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने, उनसे सुख भोगने का भाव रहता है, और प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुँचाने तथा सेवा परायण रहने का भाव रहता है। काम केवल शरीर को लेकर ही होता है और प्रेम स्थूल दृष्टि से शरीर में दिखते हुए भी वास्तव में चिन्मय तत्व से ही होता है। काम में मोह रहता है और प्रेम में मोह की गंध भी नहीं रहती। काम में संसार तथा संसार का दुख भरा रहता है और प्रेम में मुक्ति तथा मुक्ति से भी विलक्षण आनंद रहता है। काम में जड़ता यानी शरीर इंद्रिया आदि की मुख्यता रहती है और प्रेम में चिन्मयता चेतन स्वरूप की मुख्यता रहती है। काम में राग होता है और प्रेम में त्याग होता है। काम में परतंत्रता होती है और प्रेम में परतंत्रता का लेश भी नहीं होता, अर्थात सर्वथा स्वतंत्रता होती है। काम में वह मेरे काम में आ जाए ऐसा भाव रहता है और प्रेम में मैं उसके काम में आ जाऊं ऐसा भाव रहता है। काम में कामी भोग्य वस्तु का गुलाम बन जाता है और प्रेम में स्वयं भगवान प्रेमी के गुलाम बन जाते हैं। काम का रस नीरसता में बदलता है और प्रेम का रस आनंद रूप से प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। काम खिन्नता से पैदा होता है और प्रेम प्रेमास्पद की प्रसन्नता से प्रकट होता है। काम में अपनी प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है और प्रेम में प्रेमास्पद की प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है। काम मार्ग नरकों की तरफ ले जाता है और प्रेम मार्ग भगवान की तरफ ले जाता है। काम में दो होकर दो ही रहते हैं, अर्थात द्वैधी भाव यानी भिन्नता कभी मिटता नहीं, और प्रेम में एक होकर दो होते हैं, अर्थात अभिन्नता कभी मिटती नहीं। द्वैतम बोहाय बोधात् प्राग जाते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम स्वीकृतम द्वैतम द्वैतादपि सुंदरम पारमार्थिकम द्वैतम द्वैतम भजन हेतवे तादृशी यदि भक्ति स्यात्सा तो मुक्ति शताधिका। बोध से पहले का द्वैत मोह में डाल सकता है, परंतु बोध हो जाने पर भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। वास्तविक तत्व तो अद्वैत ही है, पर भजन के लिए द्वैत है। यदि ऐसी भक्ति है तो वह भक्ति मुक्ति से भी सौगुनी श्रेष्ठ है। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर अब उसकी विधि बताते हैं कि वह कैसे प्राप्त होगा। साधक के लिए दो ही खास काम हैं, संसार के साथ संबंध का त्याग और भगवान के साथ संबंध प्रेम। पूर्व श्लोक में आए मद व्यपाश्रय पद में भगवान के साथ संबंध की मुख्यता है और इस श्लोक में आए बुद्धि योग मुपाश्रित्य पद में संसार से संबंध विच्छेद की मुख्यता है। बुद्धि योग मुपाश्रित्य कहने का तात्पर्य है कि संसार का सूक्ष्म संबंध भी न रहे। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, किसी के प्रति किंचन मात्र भी राग द्वेष न रहे। एकमात्र भगवान का चिंतन करने से समता यानी बुद्धि योग स्वतः आ जाती है, इसलिए मच्चित्त सततम भव कहा गया है। पूर्व श्लोक में दी हुई आज्ञा को अब भगवान आगे के दो श्लोकों में क्रमशः अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करते हैं। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारन् श्रोष्यसि विनक्षसि, अर्थात मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। व्याख्या। भगवान कहते हैं कि मेरे में चित्त वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधा शोक दुख आदि को तर जाएगा, अर्थात उनको दूर करने के लिए तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवत भक्त ने अपनी तरफ से सब कर्म भगवान के अर्पण कर दिए, स्वयं भगवान के अर्पित हो गया। समता के आश्रय से संसार की संयोगजन्य लोलुपता से सर्वथा विमुख हो गया और भगवान के साथ अटल संबंध जोड़ लिया। यह सब कुछ हो जाने पर भी वास्तविक तत्व की प्राप्ति में यदि कुछ कमी रह जाए या सांसारिक लोगों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता देखकर अभिमान आ जाए अथवा इस प्रकार के कोई सूक्ष्म दोष रह जाएं, तो उन दोषों को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, प्रत्युत उन दोषों को विघ्न बाधाओं को दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं, मत प्रसादात् तरिष्यसि, अर्थात मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। इसका तात्पर्य यह निकला कि भक्त अपनी तरफ से उसको जितना समझ में आ जाए उतना पूरी सावधानी के साथ कर ले, उसके बाद जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। मनुष्य का अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही हुआ है कि उसने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है और भगवान से विमुख हो गया। अब उस अपराध को दूर करने के लिए वह अपनी ओर से संसार का संबंध तोड़कर भगवान के सम्मुख हो जाए। सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। अब आगे का सब काम भगवान कर लेंगे। तात्पर्य यह हुआ कि भगवत कृपा प्राप्त करने में संसार के साथ किंचित भी संबंध मानना और भगवान से विमुख हो जाना यही बाधा थी। वह बाधा उसने मिटा दी तो अपूर्णता की प्राप्ति भगवत कृपा अपने आप करा देगी। जिसका प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ संबंध है, उस पर ही शास्त्रों का विधि निषेध, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन आदि नियम लागू होते हैं और उसको उन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कारण कि प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के संबंध को लेकर ही पाप पुण्य होते हैं और उनका फल सुख दुख भी भोगना पड़ता है। इसलिए उस पर शास्त्रीय मर्यादा और नियम विशेषता से लागू होते हैं। परंतु जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा ही विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, वह शास्त्रीय विधि निषेध और वर्ण आश्रम की मर्यादा का दास नहीं रहता, वह विधि निषेध से भी ऊंचा उठ जाता है। अर्थात उस पर विधि निषेध लागू नहीं होते, क्योंकि विधि निषेध की मुख्यता प्रकृति के राज्य में ही रहती है। प्रभु के राज्य में तो शरणागति की ही मुख्यता रहती है। जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। यदि वह केवल अपने अंशी परमात्मा की तरफ ही चलता है तो उस पर देव ऋषि प्राणी माता पिता आदि आप्तजन और दादा परदादा आदि पितरों का भी कोई ऋण नहीं रहता, क्योंकि शुद्ध चेतन अंश ने इनसे कभी कुछ लिया ही नहीं। लेना तभी बनता है जब वह जड़ शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, और संबंध जोड़ने से ही कमी आती है, नहीं तो उसमें कभी कमी आती ही नहीं। और जब उसमें कभी कमी आती ही नहीं तब वह उनका ऋणी कैसे बन सकता है। यही संपूर्ण विघ्नों को तरना है। देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। अर्थात राजन, जो सारे कार्य छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान की शरण में आ जाता है, वह देव ऋषि प्राणी कुटुंबीजन और पितृगण, इनमें से किसी का भी ऋणी और सेवक नहीं रहता। साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग आदि अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, परंतु उनके आने पर भी भगवान की कृपा का सहारा रहने से साधक विचलित नहीं होता। उसे तो उन विघ्न बाधाओं में भगवान की विशेष कृपा ही दिखती है, इसलिए उसे विघ्न बाधाएं बाधा रूप से दिखती ही नहीं, प्रत्युत कृपा रूप से ही दिखती हैं। पारमार्थिक साधन में विघ्न बाधाओं के आने की तथा भगवत प्राप्ति में आड़ लगने की संभावना रहती है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेने वाले के दोनों काम मैं कर दूंगा, अर्थात अपनी कृपा से साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर दूंगा और उस साधन के द्वारा अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा। अथ चेत्वमहंकारान् श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण आत्मीयतापूर्वक अर्जुन से कह रहे हैं कि अथ पक्षांतर में मैंने जो कुछ कहा है उसे न मानकर अगर अहंकार के कारण अर्थात मैं भी कुछ जानता हूँ करता हूँ तथा मैं कुछ समझ सकता हूँ कुछ कर सकता हूँ आदि भावों के कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे इशारे के अनुसार नहीं चलेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। यद्यपि अर्जुन के लिए यह किंचन मात्र भी संभव नहीं है कि वह भगवान की बात न सुने अथवा न माने, तथापि भगवान कहते हैं कि चेत अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि अगर तू अज्ञता अर्थात अनजानपने से मेरी बात न सुने अथवा किसी भूल के कारण न सुने तो यह सब क्षम्य है, परंतु यदि तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, क्योंकि अहंकार से मेरी बात न सुनने से तेरा अभिमान बढ़ जाएगा जो संपूर्ण आसुरी संपत्ति का मूल है। पहले चौथे अध्याय में भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहकर आए हैं कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, और फिर नवें अध्याय में उन्होंने कहा है कि अर्जुन तू प्रतिज्ञा करके मेरे भक्त का पतन नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, अतः वे कभी भगवान से विमुख नहीं हो सकते और उनका पतन भी कभी नहीं हो सकता। परंतु वे अर्जुन भी यदि भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो भगवान से विमुख हो जाएंगे, और भगवान से विमुख होने के कारण उनका भी पतन हो जाएगा। तात्पर्य यह कि भगवान से विमुख होने के कारण ही प्राणी का पतन होता है, अर्थात वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। विशेष बात, इसी अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान ने प्रथम पुरुष अवापनोति का प्रयोग करके सामान्य रीति से सबके लिए कहा कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, और यह मध्यम पुरुष तरिष्यसी का प्रयोग करके अर्जुन के लिए कहते हैं कि मेरी कृपा से तू सब विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। इन दोनों बातों का तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा में जो शक्ति है वह शक्ति किसी साधन में नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि साधन न करें, प्रत्युत परमात्म प्राप्ति के लिए साधन करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी जो परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, वह यदि ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त माने नस्त्वस्त्वयस्तव भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परमं पदं ततः पतन्त्य धो अनादृत युष्मदंघ्रयः। इसलिए जब यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो फिर मनुष्य को जीते जी ही भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए और जन्म मरण से रहित हो जाना चाहिए। कर्मयोगी के लिए भी भगवान ने कहा है कि समता युक्त पुरुष इस जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म बंधन से सर्वथा रहित होना अर्थात जन्म मरण से रहित होना मनुष्य मात्र का परम ध्येय है। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि मैं अपनी कृपा से भक्तों के अंतःकरण में ज्ञान प्रकाशित कर दे, और 11वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि मैंने अपनी कृपा से ही विराट रूप दिखाया है। उसी कृपा को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी और मेरी कृपा से ही संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। परम पद को प्राप्त होने पर किसी प्रकार की विघ्न बाधा सामने आने की संभावना ही नहीं रहती। फिर भी संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तरने की बात कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन के मन में यह भय बैठा था कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, युद्ध के कारण कुल परंपरा के नष्ट होने से पितरों का पतन हो जाएगा और इस प्रकार अनर्थ परंपरा बढ़ती ही जाएगी। हम लोग राज्य के लोभ में आकर इस महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए मैं शस्त्र छोड़कर बैठ जाऊँ और धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग मेरे को मार भी दें तो भी मेरा कल्याण ही होगा। इन सभी बातों को लेकर और अनेक जन्मों के दोषों को भी लेकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरी कृपा से तू सब विघ्नों को पापों को तर जाएगा। भगवान ने बहुवचन में दुर्गाणी पद देकर भी उसके साथ सर्व शब्द और जोड़ दिया है। इसका तात्पर्य है कि मेरी कृपा से तेरा किंचन मात्र भी पाप नहीं रहेगा, कोई भी बंधन नहीं रहेगा और मेरी कृपा से सर्वथा शुद्ध होकर तू परम पद को प्राप्त हो जाएगा। परिशिष्ट भाव, भक्त का काम केवल भगवान का आश्रय लेना है, भगवान का ही चिंतन करना है, फिर उसके सब काम भगवान ही करते हैं। भगवान भक्त पर विशेष कृपा करके उसके साधन के संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देते हैं और अपनी प्राप्ति भी करा देते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, इसलिए ब्रह्मसूत्र में आया है विशेषानुग्रहश्च, भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करने से भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। वास्तव में मनुष्य पर भगवान की कृपा तो है ही, पर भगवान का आश्रय लेने से भक्त को उसका विशेष अनुभव होता है। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। अर्थात अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय झूठा है, मिथ्या है, क्योंकि तेरी छात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। व्याख्या, प्रकृति से ही महत्तत्व और महत्तत्व से अहंकार पैदा हुआ है, उस अहंकार का ही एक विकृत अंश है मैं शरीर हूँ। इस विकृत अहंकार का आश्रय लेने वाला पुरुष कभी भी क्रिया रहित नहीं हो सकता, कारण कि प्रकृति हरदम क्रियाशील है, बदलने वाली है, इसलिए उसके आश्रित रहने वाला कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जब मनुष्य अहंकार पूर्वक क्रियाशील प्रकृति के वश में हो जाता है तो फिर वह यह कैसे कह सकता है कि मैं अमुक कर्म करूँगा और अमुक कर्म नहीं करूँगा। अर्थात प्रकृति के परवश हुआ मनुष्य करना और न करना इन दोनों से छूटेगा नहीं, कारण कि प्रकृति के परवश हुए मनुष्य का तो करना भी कर्म है और न करना भी कर्म है। परंतु जब मनुष्य प्रकृति के परवश नहीं रहता, उससे निर्लिप्त हो जाता है, तो फिर उसके लिए करना और न करना ऐसा कहना ही नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति के साथ संबंध रखे और कर्म न करना चाहे ऐसा उसके लिए संभव नहीं है, परंतु जिसने प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया है अथवा जो सर्वथा भगवान के शरण हो गया है उसको कर्म करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन ने भगवान के शरण होकर शिक्षा की प्रार्थना की और उसके बाद अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान यह सोचते हैं कि यह पहले तो मेरे शरण हो गया और फिर इसने कुछ मेरे कुछ कहे बिना ही अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो फिर यह मेरी शरणागति कहाँ रही, यह तो अहंकार की शरणागति हो गई। कारण कि वास्तविक शरणागत होने पर मैं यह करूँगा यह नहीं करूँगा ऐसा कहना ही नहीं बनता। भगवान के शरणागत होने पर तो भगवान जैसा कराएंगे वैसा ही करना होगा। इसी बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई, परंतु अर्जुन पर अत्यधिक कृपा और स्नेह होने के कारण भगवान ने उपदेश देना आरंभ कर दिया। नहीं तो भगवान वहीं पर कह देते कि जैसा चाहता है वैसा कर। परंतु अर्जुन की यह बात कि मैं युद्ध नहीं करूँगा भगवान के भीतर खटक गई, इसलिए भगवान ने यह अर्जुन के उन्हीं शब्दों न योत्सेय का प्रयोग करके यह कहा है कि तू अहंकार के ही शरण है, मेरे शरण नहीं। अगर तू मेरे शरण हो गया होता तो युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहना बन ही नहीं सकता था। मेरे शरण होता तो मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा, इसकी जिम्मेवारी मेरे पर होती। इसके अलावा मेरे शरणागत होने पर यह प्रकृति भी तुझे बाध्य नहीं कर पाती। यह त्रिगुणमयी माया अर्थात प्रकृति उसी को बाध्य करती है जो मेरे शरण नहीं हुआ है, क्योंकि यह नियम है कि प्रकृति के प्रवाह में पड़ा हुआ प्राणी प्रकृति के गुणों के द्वारा सदा ही परवश होता है। यह एक बड़ी मार्मिक बात है। मनुष्य जिन प्राकृत पदार्थों को अपना मान लेते हैं उन पदार्थों के सदा ही परवश हो जाते हैं। वे वहम तो यह रखते हैं कि हम इन पदार्थों के मालिक हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम। परंतु जिन पदार्थों को अपना नहीं मानते, उन पदार्थों के परवश नहीं होते। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्राकृत पदार्थों को अपना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे वास्तव में अपने हैं ही नहीं। अपने तो वास्तव में केवल भगवान ही हैं। उन भगवान को अपना मानने से मनुष्य की परवशता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य पदार्थों और क्रियाओं को अपनी मानता है तो सर्वथा परतंत्र हो जाता है, और भगवान को अपना मानता है और उनके अनन्य शरण होता है तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाता है। प्रभु के शरणागत होने पर परतंत्रता लेश मात्र भी नहीं रहती। यह शरणागति की महिमा है। परंतु जो प्रभु की शरण न लेकर अहंकार की शरण लेते हैं, वे मौत के मार्ग में बह जाते हैं। इसी बात की चेतावनी देते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू जो यह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह कहना, तेरी यह हेकड़ी चलेगी नहीं। तुझे छात्र प्रकृति के परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा। मिथ्यैष व्यवसायस्ते। व्यवसाय अर्थात निश्चय दो तरह का होता है, वास्तविक और अवास्तविक। परमात्मा के साथ अपना जो नित्य संबंध है उसका निश्चय करना तो वास्तविक है, और प्रकृति के साथ मिलकर प्राकृत पदार्थों का निश्चय करना अवास्तविक है। जो निश्चय परमात्मा को लेकर होता है उसमें स्वयं की प्रधानता रहती है, और जो निश्चय प्रकृति को लेकर होता है उसमें अंतःकरण की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान यह अर्जुन से कहते हैं कि अहंकार का अर्थात प्रकृति का आश्रय लेकर तू जो यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा तेरा निश्चय अवास्तविक अर्थात मिथ्या है, झूठा है। आश्रय परमात्मा का ही होना चाहिए, प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार का नहीं। यदि प्राणी यह निश्चय कर लेता है कि मैं परमात्मा का ही हूँ और मुझे केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो उसका यह निश्चय वास्तविक अर्थात सत्य है, नित्य है। इस निश्चय की महिमा भगवान ने 9वें अध्याय के 3वें श्लोक में की है कि अगर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको दुराचारी नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह वास्तविक निश्चय कर चुका है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान का ही भजन करूँगा। प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। इन पदों से भगवान कहते हैं कि तेरा क्षात्र स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। क्षत्रिय का स्वभाव है शूरवीरता, युद्ध में पीठ न दिखाना। अतः धर्म में युद्ध का अवसर सामने आने पर तू युद्ध किए बिना रह नहीं सकेगा। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में यह बात आई कि अहंकार के कारण फल ठीक नहीं होगा, और इस श्लोक में यह बात आई कि अहंकार के कारण क्रिया ठीक नहीं होगी। तात्पर्य है कि सुनने या न सुनने से पतन नहीं होगा, प्रत्युत अहंकार के कारण पतन होगा। कर्म करना या न करना बाधक नहीं है, प्रत्युत अहंकार बाधक है। भगवान ने कहा कि मैं अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा और तेरे विघ्नों को भी दूर कर दूंगा, परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन बोले नहीं, जबकि उनको वहाँ करिष्ये वचनम तब कह देना चाहिए था। तब भगवान कहते हैं कि अगर तू भूल से मेरी बात न सुने तो कोई बात नहीं, पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान का भाव है कि जैसे भक्त का सब काम साधन और सिद्धि में कर देता हूँ, ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वह सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले। परंतु मेरा आश्रय न लेकर वह अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेने से मद व्यापाश्रय नहीं होगा, क्योंकि मेरे आश्रय की जगह मेरी अपरा प्रकृति अहंकार का आश्रय ले लिया। कर्तव्य कर्म में एक तो मैं लगाता हूँ, एक प्रकृति लगाती है। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी छात्र, प्रकृति तेरे को युद्ध में लगाएगी। प्रकृति लगाएगी तो जिम्मेवारी तेरी होगी, और मेरी बात सुनकर कर्तव्य में लगेगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी। तेरी जिम्मेदारी होने से तू बद्ध हो जाएगा, और मेरी जिम्मेदारी होने से तू मुक्त हो जाएगा।